संगशब्दं संबद्धं सम्मोहनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। कई दिन से उपासना का प्रसंग चल रहा है। भूतों को आधार बनाकर और शरीर के पदार्थों को आधार बनाकर इसमें सबसे सूक्ष्म जो चेतन सत्ता है उसके पास जाना चाहते हैं या हम उसका ज्ञान करना चाहते हैं। जैसे छोटे बच्चे पहली दूसरी क्लासों को क्रम से पास करते हुए अंत में MA पहुंचते हैं तो तब उनका विज्ञान कंप्लीट समझा जाता है भाषा का। इसी प्रकार इस शरीर में अध्ययन करने की बात, स्थूल शरीर है, पंचभूतों से ये शरीर बना है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म भूतों से शरीर बना है, कारण शरीर है, महतत्व के पदार्थों से कारण शरीर बना है, ये यहाँ भी विज्ञान का क्रम है। तो इसीलिए सर्वसाधारण की समझ में ये विज्ञान आता नहीं है, क्योंकि एकदम नए आदमी आए हैं उनसे हम सूक्ष्म शरीर की कारण शरीर की बातें करने लगे, सुनानी पढ़ानी देखानी, उनको कैसे बातें समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए शनै शनै कुछ काल अध्ययन किया जाए, पढ़ा जाए, सत्संग किया जाए, अभ्यास किया जाए, स्वाध्याय किया जाए, तो श्रवण मनन और निधिध्यासन, श्रवण किया जाए, मनन किया जाए, फिर निधिध्यासन किया जाए, फिर साक्षात्कार की बात आती है। तो प्राण के द्वारा उपासना का विषय चल रहा था, फिर अग्नि के द्वारा उपासना का विषय चल रहा था। यदि कई प्रकार की ज्योतियों का वर्णन किया गया था मस्तिष्क में, कई प्रकार के प्राणों का हृदय आदि में वर्णन किया गया था, इसी प्रकार जल तत्व जो है ये भी ऐसे ही माध्यम बन सकता है आत्म साक्षात्कार के लिए शरीर में। जल भी हमारे शरीर में जैसे प्राण विभक्त हुआ हुआ है भिन्न भिन्न देश में, अग्नि विभक्त हुआ हुआ भिन्न भिन्न देश में, इसी प्रकार शरीर की रचना में जल भी विभक्त हुआ हुआ है सारे शरीर के अंदर। और इस जो हम जल पीते हैं उसी जल को पी करके हमारे शरीर की खुराक बनती है, क्योंकि जल भी उपादान कारण के रूप में शरीर में वर्तमान है। प्रत्येक भूत अपनी अपनी जाति के भूतों को ग्रहण कर करके हमारे जीवन का रक्षक बना हुआ है। तो इसी प्रकार जल तत्व भी हम जो ये जल पीते हैं, रोज पानी पीते हैं, इसका परिणाम क्या बनता है? जैसे रस इसी से बनता है, जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं या अन्न में से जो रस आदि निकलता है, तो ये आमाशय में जा करके यहाँ पाकस्थली में जा करके ये रस के रूप में दो प्रकार के विभाग होते हैं, एक स्थूल एक पतला। तो पहले तो अन्न और जल जा करके इस आमाशय के अंदर रगड़े जाते हैं, पीसे जाते हैं, फिर पकवाशय में जा करके वो पतला हुआ दलिया सा मांड जैसा सा बन करके फिर वो पकवाशय की पाकस्थली में जाता आमाशय से। अब यहाँ आन करके फिर ये ग्रंथियों में इसका विभाग होता है, जैसे जिगर की ग्रंथि में रस जाता है, वो क्षार आदि मधुर आदि रसों को बनाता है, इसी प्रकार कुछ भाग बड़ी आंतों में छोटी आंतों में जाता है, कुछ गुर्दों में जाता है, यहाँ रस विभक्त होकर के जो स्थूल भाग होता है वो मोटी आंत की तरफ जाता है, और जो पतला भाग है वो पतली आंतों की तरफ जाता है और उससे भी पतला जो भाग है रस आदि का वो प्लीहा की ओर को जाता है। तो और कुछ और भाग है यहाँ जो कि इसी रस का शुक्र बनता है। वैसे तो वीर्य भी बनता है इसी रस का, तो दो प्रकार का वीर्य होता है। एक वीर्य तो वो होता है जो सारे शरीर का पोषण करता है स्त्रियों के भी और पुरुषों के भी, और एक वीर्य वो होता है जो संतान उत्पत्ति के ही काम में आता है, जिसको वह अंडकोशों में जो छोटी छोटी ग्रंथियां हैं इस प्रकार के वीर्य का निर्माण करती हैं जो केवल संतान उत्पत्ति के लिए काम आता है। जैसे जो बंध्याय और जो नपुंसक होते हैं उनमें भी वो वीर्य रहता है जो सारे शरीर का मस्तिष्क आदि का पोषण करता है, परंतु बंध्याओं में और जो नपुंसक होते हैं उनमें वो ग्रंथियां नहीं होती जो इस प्रकार के शुक्र को तैयार करती हैं जो केवल संतानोत्पत्ति के ही निमित्त बनता है, हेतु बनता है। तो इसलिए बंध्या और नपुंसक संतान पैदा करने में असमर्थ होते हैं। तो ये सारा इस जल तत्व का पेशाब जो निकलता है ये भी इस जल तत्व का ही विभाग है, पसीना जो निकलता है वो भी इसका ही विभाग है, मुँह में से थूक आता है और नासिका में से और पानी बहता है तो ये भी इस जल तत्व का ही विभाग है। हमारे जो गंडस्थल मुँह को जो तरल रखते हैं इनमें से पानी निकलता रहता है ये भी जल तत्व का ही भाग है, और रुधिर जो है वो भी इसका ही भाग है। मज्जा और मेदा पिघलने वाली चीज है, मेद तो ये होता है जो मोटापन पेट आदि में बनाता है और मज्जा वो चीज होती है जो एक झिल्ली सी चर्बी की सारी मांस की पेशियों के ऊपर शरीर के ऊपर ढकी रहती है, तो दो धातु मज्जा और मेद ये भी कहलाते हैं। तो इस प्रकार सात चीजें इससे बनती है ये, और जो हमारे शरीर की सारे की रज और वीर्य अंतिम इसके भाग बनते हैं जो हमारे शरीर के पोषक होते हैं, और इन सब तत्वों से ही हमारा शरीर जीवित रहता है। अगर ये तत्व ना हो तो हमारा शरीर जीवित नहीं रह सकता। खा पी करके रस ना बने, जब पाचन शक्ति खराब हो जाती है, आमाशय पकवाशय खराब हो जाते हैं तो रस का निर्माण अच्छा नहीं हुआ करता और भी धातुएं परिपुष्ट नहीं हुआ करती। तो रुधिर भी ठीक नहीं, जब रस ही नहीं बनेगा तो रुधिर किसका बनेगा, जब रस नहीं बनेगा मज्जा और मेदा किसके बनेंगे, जब रस नहीं बनेगा तो तद रज और वीर्य किसके बनेंगे। तो इसलिए ये सारे धातु जो हैं हमारे शरीर की रक्षा के लिए पोषण के लिए, इनके बिना हमारा मरण हो सकता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जैसे प्राण हमारे शरीर में जीवन का आधार है, इस जल तत्व के परिणाम भाग परिणित हुए हुए भाग जो हमारे शरीर में है वो भी हमारे जीवन के आधार हैं, हमारे शरीर के पोषण के आधार हैं। तो जल तत्व के द्वारा भी उसकी उपासना की जा सकती है और इस जल तत्व के जो ये पदार्थ हैं जिनका वर्णन किया है इनमें भी उसको खोजा जा सकता है, समझा जा सकता है, क्योंकि उसके आधार पर ही ये सब चेतन सी बनी हुई सारी चीजें ये कर्म और व्यवहार कर रही हैं। शारीरिक विज्ञान को, स्थूल शरीर के विज्ञान को डॉक्टरी के ढंग से और आयुर्वेद के ढंग से भी अध्ययन किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। अगर डॉक्टर और वैद्य इस विज्ञान में अध्यात्म विज्ञान में प्रवृत्त हों तो उनको जल्दी ज्ञान हो सकता है, क्योंकि स्थूल शरीर का तो उनको बहुत कुछ ज्ञान होता है और स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म का भी ज्ञान होता है, और इसके वह सूक्ष्म को भले वो ना मानते हो परंतु सूक्ष्म शरीर के जहाँ कार्य स्थूल शरीर में होते हैं उसके रहते हुए तो उन सब बातों का विज्ञान तो आयुर्वेद के और डॉक्टरी के ढंग से हो जाता है। तो कम से कम सारे संस्थानों का ज्ञान हो जाता है कि ये जल तत्व कहाँ कहाँ किन किन संस्थानों में कैसे कैसे कार्य कर रहा है, अग्नि तत्व के प्रधान सेंटर कौन कौन से हैं, किन किन सेंटरों में रह कर के शरीर के अग्नि कार्य करता है, प्राण के प्रधान प्रधान कौन से स्थान हैं जहाँ विशेष विशेष कार्य प्राण के होते हैं, जैसे कंठ का प्राण भिन्न कार्य करता है और आमाशय पेट का प्राण भिन्न कार्य करता है, अपान प्राण भिन्न कार्य करता है, ऐसे ही अग्नि तत्व में भी भिन्न भिन्न स्थानों के एक ही पदार्थ है पर स्थान भेद से उसके कर्म का भेद भी हो जाता है और व्यापार का भेद भी हो जाता है। जैसे प्राण के प्राण एक ही है पर उसके स्थान भेद से प्राणों का भेद हो जाता है और शरीर में कार्यों का भी भेद हो जाता है। इसी प्रकार जल के भी इसी प्रकार संस्थान है, एक ये ऊपर का भाग और एक ये नाभि तक भाग और एक ये नीचे का भाग। इन 10 संस्थानों में जल भी 10 प्रकार से रह करके शरीर के पालन पोषण रक्षण का कार्य करता है और इन स्थानों का पोषण भी करता है और रक्षण भी करता है और एक प्रकार से जीवन का संचार भी करता है, क्योंकि यदि रक्त जम जाए तो जीवन नहीं चलता है। अगर रक्त सो जाए, रक्त की गति ना हो तो मरण जैसा सा हो जाता है। हार्ट में क्या होती है, हार्ट फेली तो होता है, रक्त का प्रक्षेपण बंद कर देता है। तो रक्त जो है ये जल का ही परिणाम विशेष है, रस का ही परिणाम विशेष है। जो जल पिया गया था वो अन्न के साथ में मिल करके उसने कुछ अन्न का भाग लिया, कुछ अपना भाग लिया, रस के रूप में परिणित किया, रुधिर आदि के रूप में और दूसरे मज्जा मेदा आदि के रूप में परिणित हो जाता है, या शुक्र के रूप में रज के रूप में परिणित हो जाता है। तो एक ही ये पदार्थ है तो दूसरे तत्वों को लेकर पार्थिव तत्वों को लेकर के स्थान भेद से इसके भी भेद हो जाते हैं और उन उन स्थानों में शरीर की रक्षा करता है, पालन पोषण करता है, वहाँ की नस नाड़ियों में गति आदि देता है। अगर ना किसी एक नाड़ी को यहाँ से तोड़ दो तो रक्त का बहान एकदम होने लगता है, सारे शरीर जैसे एक ही नाड़ी का संबंध जैसे सारे शरीर के साथ हो, वरना तो उसी नाड़ी का रक्त आन करके खत्म हो जाए। जब तक उस नाड़ी को बंद नहीं किया जाता तो रक्त बहता ही रहता है। तो इससे सिद्ध होता है कि एक एक नाड़ी का संबंध सारे शरीर के साथ में वर्तमान है, तो सारे शरीर का रक्त एक ही नाड़ी से आन करके बहने लगता है। तो इस प्रकार शरीर के विज्ञान को जब अध्ययन करते हैं तो इसके पीछे कोई इस प्रकार की चेतन सत्ता हमें समझ में आ जाएगी, क्योंकि प्राण सूक्ष्म था, अग्नि और स्थूल था, अब ये जल उससे भी स्थूल है। अगर जल को भी माध्यम बना करके जल को जीवन का आधार समझा जाए और इसके पीछे चेतन शक्ति का अनुभव किया जाए, तो जिस प्रकार प्राण के द्वारा आत्म साक्षात्कार पर पहुँचता है, जिस प्रकार तेज के द्वारा आत्म साक्षात्कार पर पहुंचता है, इसी प्रकार जल के द्वारा भी आत्म साक्षात्कार पर पहुंच सकता है योगी। आप पहले कम से कम 15 मिनट तो ये जो उपदेश दिया है इसके आधार पर मनन करना, चिंतन करना, आया कि ये हमारे शरीर में घटता भी है या नहीं, फिर इसको ही माध्यम बना करके 15-20 मिनट इसको समझना, याद करना, देखना इन इन संस्थानों को जहाँ जहाँ ये चीजें बनती हैं, और फिर इनके पीछे चेतना का अनुसंधान करना, जैसे प्राण के पीछे चेतना का अनुसंधान करते थे, तेज के लाए ज्योति के पीछे भी चेतना का अनुसंधान करते थे, ऐसे जल के पीछे भी आपको चेतना का अनुसंधान करना है, पृष्ठ भाग में अंतिम छोर पर।